पृष्ठ संख्या 78, 8। आधुनिक काल जिसकी विशिष्टता को परिलक्षित करके आचार्य शुक्ल ने उसे ठीक ही गद्य काल नाम दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रवर्तित माना जाता है। भारतेंदु का कृतित्व, जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, संक्रांति कालीन चेतना का रूप है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। एक के लिए ब्रजभाषा को वे पकड़े हुए हैं और दूसरे के लिए खड़ी बोली को अपनाते हैं। फिर भारतेंदु के बाद तो खड़ी बोली ही हिंदी क्षेत्र की व्यापक काव्य भाषा बनती है और इसमें रचना करने वाले हिंदी प्रदेश के विविध जनपदों और बोली क्षेत्रों से संबद्ध रहे हैं। भोजपुरी कोष्ठक में प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल यानी आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक कोष्ठक बंद, अवधि कोष्ठक, निराला, भगवती चरण वर्मा कोष्ठक बंद, बुंदेली, मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, हिमाचली, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पहाड़ी, सुमित्रा नंदन पंत, इला चंद्र जोशी, ब्रजभाषा, महादेवी वर्मा, इन सभी आधार बोलियों का वैविध्य आधुनिक हिंदी काव्य भाषा में रचा गया है। भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, इन बोली रूपों और जातीय क्षेत्रों की सृजनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है। आज परिनिष्ठित या मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। बड़े लेखकों में जिस क्षेत्र के अकेले प्रतिनिधि जैनेन्द्र हैं, और इस विडंबना का दूसरा पक्ष यह है कि इस वर्ग में पूरब के साकिनों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, जिनके साथ जबान खराब जाएगी इस डर से दिल्ली के शायर मीर तो शायद बात करना भी पसंद न करते। इस प्रकार हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञेय और मुक्तिबोध, तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। मनुष्य की अवधारणा के रूप हिंदी साहित्य के इतिहास में कई बार बदले हैं और इसी के साथ परम तत्व को लेकर उसके रिश्ते भी। आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है, जबकि भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है। आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है, पृष्ठ संख्या 79, और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या कि कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। इसी का परिणाम यह देखा जा सकता है कि प्रेम और भक्ति, लौकिक और अलौकिक संबंध, जो अभी तक या तो अलग अलग अनुभव थे या कभी कभी एक दूसरे का संस्पर्श करते थे, अब उनका अंतर आधुनिक काल में आकर विलीन हो गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि 1910 से 1912 में जब उसके नीरव पदचाप का उल्लेख होता है, जो याद आता है बराबर आता है, तो यह पदचाप प्रेमी और परम तत्व दोनों की है। कई बरस बाद प्रसाद जब अपनी पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति झरना का समर्पण लिखते हैं, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, शूद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधिशीर, हमारा कहो न अब क्या रहा, तुम्हारा सब कब का हो रहा, तुम्हें अर्पण और वस्तु त्वदीय, छीन लो छीन ममत्व मदीय। तो यहाँ भी समर्पण का पात्र प्रेमास्पद और परम तत्व दोनों है। काव्य के स्तर पर यह समझा सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, अहम का बलिदान। और प्रसिद्ध आधुनिक कवि तथा समीक्षक इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने में अहम भाव से निष्कृति है। यूँ प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में दृष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। मनुष्य की बुनियादी अवधारणा में यह परिवर्तन कैसे होता है, इसे समझने के लिए आधुनिक युगीन मानसिकता का व्यापक परीक्षण आवश्यक होगा। इस मानसिकता को सामान्य रूप से पुनर्जागरण या नवजागरण कहकर इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में पुकारा गया है। पुनरुत्थान शब्द में कुछ अतीतोन्मुखता झलकती है, अतः उसका प्रयोग यहाँ वांछनीय नहीं। पुनर्जागरण एक ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो बहुत से देशों के इतिहास में घटित होती रही है। इनके कालखंड और निमित्त अलग अलग रहे हैं। संक्षेप में, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस टकराहट के विशिष्ट उदाहरण के रूप में यूरोपीय पुनर्जागरण का उल्लेख होता है, जिसकी तिथि एक दुर्घटना के संयोग से जुड़ी हुई है। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपोल नगर के पतन के बाद वहां एकत्र ईसाई चिंतकों और कलाकारों ने भागकर इटली तथा आसपास के क्षेत्रों में शरण ली। इस नए संपर्क के फलस्वरूप ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं का यूरोप में अनेक मुखी प्रसार हुआ। अमेरिका में सांस्कृतिक टकराहट का परिणाम 19वीं शती में देखने को मिलता है, जहां सारे यूरोप के अध्यवसायी आजीविका के लिए एकत्र हुए। फिर बाद में हिटलर के भय से बड़े बड़े यहूदी वैज्ञानिकों और कलाकारों ने इसी नए देश में आश्रय लिया। भारत के संदर्भ में पुनर्जागरण 19वीं शती से आरंभ माना जाता है। नई यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति और पुरानी भारतीय धार्मिक संस्कृति की टकराहट के फलस्वरूप यहाँ एक संगत प्रश्न यह उठता है कि मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के समय, जब उसका तत्कालीन भारतीय या कि हिंदू पृष्ठ संख्या 80 संस्कृति से संपर्क हुआ, तब पुनर्जागरण क्यों नहीं माना जाता। इस जिज्ञासा के संदर्भ में कहना होगा कि इस्लाम के आगमन पर इस देश में सैनिक टकराहट तो भरपूर हुई, पर सांस्कृतिक टकराहट का कोई गहरा रूप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों अपने अपने ढंग की रूढ़ियों में बंधी धर्म प्रधान संस्कृतियाँ थीं। इसलिए हिंदू और इस्लामी जीवन के संपर्क से संगीत और स्थापत्य जैसी कलाओं में कुछ नए प्रयोग जरूर हुए, पर जीवन पद्धति का बुनियादी स्वरूप यथावत रहा। पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। यद्यपि नए राष्ट्रों में पुनर्जागरण का स्वरूप इससे कुछ भिन्न देखा जा सकता है। रूस जैसे बड़े और इस शती में पुनर्गठित देश में आधुनिक विकास का क्रम योजनाबद्ध रूप में चलाया गया है। अमेरिका में इस प्रकार की सजग योजना व्यवहारिक रूप में भले न रही हो, पर वहां के मनुष्यों की दृष्टि भी कुछ ऐसी ही प्राथमिकताओं के क्रम में बंध कर चली है। दूसरे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने 1780 ईस्वी में पेरिस के अध्ययन काल में वहां से एक पत्र स्वदेश को लिखा, जिसमें अपने विचारों को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया, मुझे राजनीति और विग्रह का अध्ययन करना है, जिससे मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने की सुविधा हो सके। मेरे बेटों को पढ़ना चाहिए गणित और दर्शन, भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, नौ स्थापत्य, संतरण, वाणिज्य और कृषि, जिससे फिर उनके पुत्रों को अधिकार मिले कि वे चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, पट निर्माण और चीनी साजी सीख सकें। इसके विपरीत भारत की दृष्टि सर्वांगीण विकास की रही है। प्रसिद्ध चित्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी के बारे में लक्षित किया था कि अपने जिस समाचार पत्र के अंक में गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संपादकीय लिखा था, उसी में नीचे उन्होंने दूसरा संपादकीय मूंगफली के उपयोग पर लिखा था। क्रिप्स प्रस्ताव अपनी जगह निश्चय ही महत्वपूर्ण थे, पर मूंगफली के उपयोग अपनी जगह कम महत्वपूर्ण नहीं हो पाते। समग्र और संपूर्ण मनुष्य की यह परिकल्पना भारतीय पुनर्जागरण चेतना के केंद्र में है। इसका आरंभ राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 के व्यक्तित्व में है, तो निष्पत्ति महात्मा गांधी के साथ 1869 से 1948। विरुद्धों का सामंजस्य, जिसे हमने भारतीय मानस की एक प्रमुख विशेषता कहा है, उसका व्यवहारिक निदर्शन इस अवधि में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। राम मोहन राय ने अपना चिंतन उपनिषदों से ग्रहण किया, पर हिंदू आराधना शैली की परंपरागत एकांतिक पद्धति को छोड़कर उन्होंने यूरोपीय चर्च का संगठन अस्वीकार किया, जिसमें पूजन की सामूहिक पद्धति प्रचलित थी। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में की, जिसकी प्रेरणा से फिर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज 1867 का जन्म हुआ। हिंदी क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की नींव डाली। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि इन संस्थाओं के नामकरण के उत्तर पक्ष में समाज पर विशेष बल दिया गया है। हिंदू एकांतिक जीवन पद्धति के विरुद्ध उसे समाज के रूप में गठित करने का यह प्रयास बड़े सजग रूप में पुनर्जागरण के मनुष्यों ने किया। इन तीनों मुख्य समाजों की कई साझी विशेषताएं परिलक्षित की जा सकती हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, आराधना की सामूहिक शैली पर बल देते हैं। हिंदू समाज के दो पिछड़े समूहों, नारी और शूद्र, को शेष उच्च वर्गीय पुरुषों के साथ समानता का दर्जा देते हैं। उपनिषद और गीता इनके चिंतन के केंद्र में हैं। संगठन का ढांचा ये ईसाई चर्च का स्वीकार करते हैं। भारतीय हिंदू विचारधारा और पाश्चात्य ईसाई संगठन का सामंजस्य, यह इनके आंदोलन का मूल मंत्र है। अध्यात्म को पुनर्जागरण पहले, पृष्ठ संख्या 81, लोक सेवा से जोड़ता है और फिर लोक सेवा को क्रमशः राष्ट्रीय भावना से। राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक की यह विचार और कर्म यात्रा है जिसे बनाने और बढ़ाने में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद जैसे कई मनुष्यों का विशिष्ट योगदान रहा है। भारतीय पुनर्जागरण में विरुद्धों के सामंजस्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान 1893 है, जहां अद्वैत के अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान और भारतीय धर्मशास्त्र का समाहार दिखाते हुए उन्होंने घोषित किया था, इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता, यही सारे विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य के विकास में कलकत्ता की दो शैक्षणिक संस्थाओं का विशिष्ट योग रहा है। बंगाल, विशेषतः तत्कालीन राजधानी कलकत्ता से पुनर्जागरण आरंभ हुआ तो इसका कारण स्पष्ट है कि यही भारतीय संस्कृति की यूरोपीय संस्कृति से टकराहट आरंभ हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, पर इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। यहाँ उस समय की राजधानी में इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। उस प्रशिक्षण में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी भी शामिल थी। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट ने अपनी समझ के हिसाब से हिंदी, हिंदुस्तानी गद्य में पुस्तकें लिखवाई। जिस समय रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर ब्रज भाषा का परिष्कार ठेठ हिंदी क्षेत्र में रहकर अपने कवित्व सवैयों में कर रहे हैं, उसी समय सुदूर राजधानी कलकत्ता में हिंदी गद्य के साथ नए प्रयोग चले हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद या तत्संबंधी वृत्तांतों के रूप में कुछ पुराना ब्रज भाषा या खड़ी बोली हिंदी गद्य का रूप अभी तक मिलता था, पर व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नियोजित गद्य का सजग रूप में प्रयोग यहाँ से आरंभ होता है। रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं, ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वाशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि योग वाशिष्ठ 1741 या कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबिल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित हैं। ऐहिक उद्देश्यों के लिए गद्य का प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध अध्यापकों की पुस्तकों में हुआ है, जिनमें प्रमुख हैं 1803 में लिखित लल्लू जी लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। पर इस काल में स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंशा अल्लाह खां की उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी 1800 के आसपास में मिलता है। बीच की अवधि में धार्मिक, पत्रकारिक और शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा गया गद्य है, जब तक भारतेंदु के माध्यम से साहित्यिक गद्य का आविर्भाव नहीं होता। बहरहाल फोर्ट विलियम कॉलेज का जो भी योगदान है वह आधुनिक खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं के क्षेत्र में है। बंगीय क्षेत्र से आरंभ हुए पुनर्जागरण की व्यापक प्रक्रिया को गतिशील करने में कलकत्ता के जिस दूसरे कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका है वह है हिंदू कॉलेज 1817। इस कॉलेज के माध्यम से पहली बार भारतीय युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ, जिसने उन्हें अपनी परंपरा को फिर से पृष्ठ संख्या 82 देखने परखने के लिए क्रमशः बाध्य किया। ब्रिटिश शासन के युग में पराधीनता जितनी गहरी होती गई उतनी अस्मिता का बोध उतना तीव्र हुआ। मध्यकाल में इस्लाम के आक्रमण का जैसा संबंध भक्ति काल के उदय से है, कुछ वैसा ही संबंध 19वीं शती में अंग्रेजी प्रभुत्व से भारतीय राष्ट्रीयता का है। पर भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन मानना या कि पुनर्जागरण को अंग्रेजों की, कुछ वैसा ही होगा जैसे मानवीय संस्कृति के उत्कर्ष के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराना, क्योंकि इस तर्क प्रणाली से तो सिद्ध होगा कि न शैतान आदम हुआ को सृष्टि के आरंभ में बरगलाता, न वे ज्ञान फल चखते और न स्वर्ग के उद्यान से नीचे गिरा दिए जाते, और तब फिर मानवीय सृष्टि देव सृष्टि के संरक्षण से अलग ही क्यों होती। मध्यकाल में भी दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आईं और आधुनिक काल में भी, पर मध्यकाल में पुनर्जागरण नहीं हुआ जबकि आधुनिक काल में हुआ। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, यहाँ फिर दोहराया जा सकता है कि मध्यकाल में जिन संस्कृतियों का संपर्क हुआ वे अपनी मूल प्रकृति में एक दूसरे के सदृश थीं, इसलिए सैनिक टकराहट का विकराल रूप इस काल में देखने को मिलता है, पर सांस्कृतिक टकराहट का रचनात्मक रूप नहीं। आधुनिक काल में भारत भूमि पर संपर्कित होने वाली दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे के भी सदृश थीं। यूरोपीय संस्कृति नई वैज्ञानिक सभ्यता और चिंतन धारा पर आधारित थी, जबकि परंपरित भारतीय संस्कृति धर्म और अध्यात्म प्रधान थी। इस टकराहट से विशिष्ट सांस्कृतिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण का नाम देते हैं। इस टकराहट का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी पड़ा है, जिसे इस रूप में विचारकों ने अभी कम पहचाना है। 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका लेखक येट्स, मुख्य रचनाकाल 19वीं-20वीं सदी के संधि वर्ष की काव्य कृतियों में भारतीय साधना के तत्व इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रचना एलियट की द वेस्ट लैंड 1922 पर उपनिषदों के चिंतन का प्रभाव तथा कुछ बाद की लोकप्रिय कथाकृति सॉमरसेट मॉम के उपन्यास द रेजर्स एज 1944 में भारतीय दर्शन और संदर्भों की बुनावट यह भली भांति प्रदर्शित करती है कि संस्कृतियों की इस टकराहट में अंग्रेजी साहित्य और चिंतन परंपरा ने भी अपने को समृद्ध बनाया है। इस संदर्भ का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसका भारतीय समीक्षा में उल्लेख अभी होना है। लंबे अरसे तक खोई रही वेस्टलैंड की पांडुलिपियों के प्रकाशन के समय 1971 यह देखा गया कि एलियट ने इस काव्य के निमित्त छोटे बड़े कई अंश और रचे थे, जिनमें से कुछ को अपने मित्र पाउंड की सलाह पर और कुछ को अन्य कारणों से उसमें शामिल नहीं किया। ऐसा ही एक अंश है जिसमें कुल एक छंद है, अपने में स्वतः पूर्ण। छंद यूं हैं: आई एम द रिजेक्शन एंड द लाइफ, आई एम द थिंग्स दैट स्टे एंड दोज दैट फ्लो, आई एम द हस्बैंड एंड द वाइफ एंड द विक्टिम एंड द सैक्रिफिशियल नाइफ, आई एम द फायर एंड द बटर ऑल्सो। अर्थात, मैं ही पुनर्जन्म और जीवन हूँ, मैं अचर हूँ और चर भी, पति और पत्नी मैं दोनों जन हूँ, बलि पशु हूँ मैं ही, यज्ञ शूर पावन हूँ, मैं हवि हूँ और वैश्वानर भी। साफ दिखता है कि यहाँ पहली पंक्ति ईसा मसीह की है, बाइबिल से ली हुई, और शेष पंक्तियों के विधान में गीता के विराट रूप प्रसंग की छाया है, जो कृष्ण द्वारा व्याख्यायित है। किसी बड़े कवि द्वारा पाश्चात्य और भारतीय दृष्टि का ऐसा विराट संगम दुर्लभ है। ये पंक्तियां वेस्टलैंड का अंश बनी या नहीं, यह बात अलग है, पर इस प्रसंग से कवि की उस संपृक्त मानसिकता का पता चलता है जिसमें वह इस काव्य की रचना कर रहा था। द्र नरसिंह श्रीवास्तव का अनुवाद। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। परंपरा से मेघनाद के उपेक्षित चरित्र को इसमें एक नई सहानुभूति देने का नई चिंतन प्रक्रिया में सफल उपक्रम है। यहाँ मानो एक दृष्टिकोण पूरी शक्तिमत्ता के साथ स्थापित होता है। फिर माइकल से बंकिम चंद्र चटर्जी होते हुए पुनर्जागरण का प्रवाह पूरे वेग के साथ रविंद्रनाथ ठाकुर में दिखाई देने लगता है। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार की घोषणा साहित्यिक पुनर्जागरण की व्यापक स्तर पर स्वीकृति है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 के व्यक्तित्व में मिलती है। यहाँ स्मरणीय है कि आधुनिक काल में संस्कृति आर्य संस्कृति के केंद्र पश्चिमी भारत में थे, और तब पूर्व को अनार्य और अपभ्रष्ट जीवन पद्धति का स्थान माना जाता था। पुनर्जागरण में प्रवाह की दिशा उलट गई। पहले पूरबिया या कि पूरब के साखिनों मीर साहब पूरब का प्रयोग करते हैं, मशरिक का नहीं, किसी को कहना उनका अपमान करना था। 19वीं तथा 20वीं सदी के बंगाल में पश्चिमा प्रयोग ने उनका स्थान ले लिया। अंग्रेजी राज के सबसे विशिष्ट रेलगाड़ी एक अप आवड़ा कालका मेल की यात्रा दिशा मानो तत्कालीन सांस्कृतिक प्रवाह की प्रतीक हो गई, और तब यह अकारण नहीं है कि बिहारी पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी क्षेत्रों में हिंदी साहित्य के आरंभिक रचना केंद्र पत्रकारिता तथा प्रकाशन संस्थान कुछ इसी क्रम में विकसित हुए। कलकत्ता, पटना, काशी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली। आधुनिक हिंदी लेखकों में पूरब के साखिनों की अपेक्षा अधिक संख्या और काशी के विशिष्ट केंद्र का जो उल्लेख पहले किया गया, उसकी कुछ व्याख्या यहाँ हो जाती है। साहित्यिक परिदृश्य पर भारतेंदु के अवतरण के ठीक पहले हिंदी क्षेत्र में दो राजाओं की रचनात्मक और वैचारिक प्रतिद्वंदिता ध्यान देने योग्य है। दोनों अंग्रेजी शासन के प्रति पूरे वफादार थे, पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैसा ही आचरण करना चाहते थे जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष हित में हो, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह अपने सेवा कार्य में तो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे, पर विचार के अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र विवेक से कार्य लेते। दोनों को अंग्रेज सरकार ने राजा का पद दिया था और वे प्रशासन में उच्च पदों पर थे। राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में थे और इस दृष्टि से उन्होंने विविध विषयों पर विविध स्तरीय कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सामान्य ग्रंथ तैयार किए थे। आरंभ में वे परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी के पक्षधर थे, पर क्रमशः सरकारी नीति के अनुकूल अरबी फारसी मिश्रित उर्दू शैली के पुरस्कर्ता हो गए। राजा लक्ष्मण सिंह ने कुछ तो उपयोगी साहित्य पृष्ठ संख्या 84 की रचना की, पर मूलतः वे कृतिकार थे। उन्होंने कालिदास की प्रमुख रचनाओं का अनुवाद किया, जिनमें से शकुंतला नाटक उन्होंने खड़ी बोली गद्य में अनुवादित किया और मेघदूत ब्रज भाषा काव्य में। यही व्यवस्था मानव भारतेंदु ने आगे चलकर स्वीकार की, गद्य खड़ी बोली में और कविता ब्रज भाषा में। राजा लक्ष्मण सिंह के ये अनुवाद बड़े सरस हुए हैं। शकुंतला नाटक में खड़ी बोली का और मेघदूत में ब्रज भाषा का जैसे प्रतिमान उन्होंने स्थापित किया हो। राजा शिव प्रसाद का कार्य मुख्यतः गद्य के क्षेत्र में था और यह स्मरणीय है कि वे भारतेंदु के विद्या गुरु थे, यद्यपि भाषा नीति को लेकर आगे गुरु शिष्य में मतभेद हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य साहित्य परंपरा का प्रकरण खोलते हुए रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु के कृतित्व में नाटक की केंद्रीय स्थिति को सही पहचानते हैं, पर एक विस्मय का भाव प्रकट करते हुए वे लिखते हैं, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षणता शायद उन्हें इस बात में लगती है कि कहां तो हिंदी क्षेत्र में नाटक पिछली 5 शताब्दियों से अनुपस्थित था और कहां आधुनिक काल के प्रवर्तन इसी माध्यम से होता है। ऊपर से देखने पर यह विस्मय वाजिब है, पर यदि समुचित स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो परिप्रेक्ष्य कुछ दूसरे रूप में उभरता दिखता है। पुनर्जागरण आंदोलन के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वहां एक मुख्य प्रतिज्ञा यह थी कि हिंदू जाति की एकांतिक भावना का निरसन करके उसे एक समाज के रूप में गठित किया जाए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और आगे चलकर स्वयं भारतेंदु द्वारा संस्थापित तदीय समाज 1873 नामकरण और उनके कार्यक्रम इस मान्यता को भली भांति पुष्ट करते हैं। इधर नाटक सभी साहित्य और कला माध्यमों के बीच अपनी प्रकृति में सर्वाधिक सामाजिक हैं। रंगमंच पर उसका प्रस्तुतिकरण अनेक प्रकार के कलाकारों के सहयोग से होता है, वैसे ही उसका आस्वादन समाज के रूप में किया जाता है। इस स्थिति में पुनर्जागरण की व्यापक सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए नाटक ही सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम था। यो गद्य के क्षेत्र में नाट्य माध्यम का पहला चुनाव करके भारतेंदु ने अपनी सही ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया। भारतेंदु के व्यक्तित्व में आलोचकों द्वारा कई प्रकार का द्वैत परिलक्षित किया गया है। पुनर्जागरण की अनिवार्य प्रक्रिया विरुद्धों का सामंजस्य वस्तुतः जहाँ कुछ ऊना पड़ा है वहीं फांक नजर आएगी। यह फांक भारतेंदु में कई रूपों में दिखती है, पर इस द्वैत की चर्चा के पूर्व भारतेंदु में व्यक्तित्व की संश्लिष्टता का विवेचन उपयुक्त होगा। स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र भारतेंदु ने 23 मार्च 1874 की कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया था। राम विलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। पृष्ठ 3, यहाँ समझा जा सकता है बंगाल में आरंभ हुई पुनर्जागरण चेतना मध्य देश में पहुंचकर अधिक प्रखर रूप में राष्ट्रीय हो जाती है और उसके वाहक बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा जैसे नाम की पत्रिका में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित होना आज कुछ अटपटा सा लग सकता है, पर वह पुनर्जागरण की मूल संश्लिष्ट प्रकृति के अनुकूल है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है। अपने बलिया वाले व्याख्यान 1884 में भारतेंदु कहते हैं, इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो वह हिंदू है। हिंदू की पृष्ठ संख्या 85 सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्रह्मा, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। हिंदू की इस व्याख्या में भारतेंदु का अंतर बंकिम चटर्जी से सीताराम उपन्यास हिंदू को हिंदू न बचाएगा तो कौन बचाएगा स्पष्ट समझा जा सकता है। स्वदेशी की भावना और राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष परिकल्पना में भारतेंदु का चिंतन अग्रगामी कहा जाएगा। वे इस प्रसंग में आधुनिक संविधान को बहुत पहले से पूर्वाश्रित करते दिखाई देते हैं। भारतेंदु के बारे में कहा जा सकता है कि वे ऐसे भक्त थे जो समकालीन राजनीति पर पूरी दृष्टि रखते थे और उनकी रचना इस पूरी स्थिति में से निष्पन्न होती है। एक और श्री चंद्रावली नाटिका है, जिसमें चंद्रावली के माध्यम से लेखक ने अपनी ही प्रेमा भक्ति को निष्ठापूर्ण अभिव्यक्ति दी है, जिसमें केवल नारी पात्र हैं। कृष्ण भी रंगमंच पर जोगिन के वेश में आते हैं। दूसरी ओर मुद्रा राक्षस का रूपांतर है, जिसमें नारी पात्रों का प्रायः एकांत भाव है और जहाँ कूटनीति के दांव पेच पूरी जटिलता में अंकित हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर भारतेंदु का संश्लिष्ट व्यक्तित्व बनता है, जो पुनर्जागरण चेतना के अनुरूप है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। टैक्स, महामारी, धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज उठाते हैं। स्वदेशी और मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं, जिन आंखों और कृष्ण की अनंत प्रतीक्षा में आंखें खुली की खुली रह जाने का मार्मिक उल्लेख करते हैं, जिन आंखों की समर्थ समीक्षक रामविलास शर्मा अपने सैद्धांतिक पूर्वग्रह के कारण देखकर भी अनदेखी करते हैं, पर भारतेंदु के संदर्भ में यह आधुनिक मानव जीवन की समग्र प्रस्तावना है जो पुनर्जागरण की मुख्य भावभूमि है। भारतेंदु के रचनाकार व्यक्तित्व की संश्लिष्टता उनके काव्य रूपों के चुनाव में पूरी तरह झलकती है। वे हृदय से कवि हैं, पर उनकी कविता ब्रजभाषा में है और अधिकतर भक्तिकालीन संस्कारों से युक्त बीच बीच में कुछ रीतिकालीन भंगिमा भी दिख जाती है। नवोन्मेष के दबाव में अपवाद स्वरूप कुछ कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं, तब छंद विधान अधिकतर उर्दू का है। गद्य सारा का सारा खड़ी बोली में है और यद्यपि वे खड़ी बोली गद्य के पहले रचनाकार हैं, शिक्षक प्रवचनकर्ता और अनुवादक से आगे, पर उन्होंने अपने समय में संभाव्य सभी गद्य रूपों का प्रयोग किया। नाटक एक अधूरा उपन्यास, आत्मकथा, निबंध, समीक्षा, पत्रकारिता, नाटक उनके कृतित्व के केंद्र में है, यह कहना शायद ठीक होगा। पुनर्जागरण चेतना के सशक्त अभिव्यक्ति के लिए उनका यह सजग चुनाव है जिस तक साक्षर निरक्षर सबकी पहुंच है। नाटक के जन्म की भारतीय कथा में भी भरत मुनि ने उल्लेख किया है कि यह माध्यम सब वर्णों के लिए है और आधुनिक जनतंत्र के युग में तो उसकी विशेषता और उभर कर आती है। भारतेंदु ने पूरे अधूरे मूल अनुवाद सब मिलाकर 17 नाटक रचे। नाटक शीर्षक से एक लंबा निबंध लिखा 1883, जो हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि नाटक और रंगमंच को अभिन्न मानकर उन्होंने स्वयं और अपने मित्र मंडली के माध्यम से नाटकों के अभिनय को बराबर प्रोत्साहन दिया। यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला, हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है, देखे लास्ट नाइट कब होती है। भारतेंदु ने संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी तीनों स्रोतों से नाटक के अनुवाद किए। उनका दुर्लभ बंधु 1880, अंग्रेजी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूपांतरण शेक्सपियर के हिंदी में पृष्ठ संख्या 86 बिल्कुल आरंभिक अनुवादों में से है। शेक्सपियर का पहला हिंदी अनुवाद माना जाता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रत्नचंद्र द्वारा प्रस्तुत शीर्षक भरम जालक नाटक 1879। मौलिक नाटकों में विषय, नाट्य रूप, ऐतिहासिक क्रम हर दृष्टि से वैविध्य द्रष्टव्य है। इनमें से अंधेर नगरी 1881 को समकालीन क्लासिक की कोटि में गिना जा सकता है। अंग्रेजी राज पर तत्कालिक रूप में और शासन सत्ता की प्रकृति पर शाश्वत रूप में यह सरल शैली में लिखा गया पर उतना ही तीखा व्यंग है। इसे प्रहसन कहकर हम इसकी पूरी नाट्य प्रक्रिया का सरलीकरण कर लेते हैं। जोनाथन स्विफ्ट की अंग्रेजी रचना गलिवर्स ट्रेवल्स की तरह इसमें अर्थ की परतें अनेक स्तरों पर खुलती हैं, इसलिए बच्चों से लेकर ज्ञान वृद्धों तक के बीच में यह रचना लोकप्रिय है। जैसा कहा गया, शासन सत्ता का अंधापन और अंधेर इस नाटक का मुख्य उपजीव्य है। तत्कालीन संदर्भ ब्रिटिश राज का अन्याय है। नाटक की इस प्रकृति के ही कारण यह आधुनिक नाट्य मंडलियों की बड़ी प्रिय प्रस्तुति है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, प्रयाग रंगमंच इलाहाबाद आदि अनेक संस्थाओं ने अपने अपने ढंग और आग्रह के साथ इसे प्रस्तुत किया है। बाजार के दृश्य में जात वाले की विज्ञप्ति, एक टका दो हम अभी अपने जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। आधुनिक राजनीति में दल बदल की दिन दिन बढ़ती प्रवृत्ति पर अनायासी बड़ी तीखी चुटकी है। इस समूचे दृश्य में एक ओर विक्रेताओं द्वारा अपनी वस्तुओं का विज्ञापन और दूसरी ओर समकालीन स्थितियों पर टिप्पणी, ये मिलकर एक नए तरह के कोरस का निर्माण करते हैं। कुंजड़िन की उक्ति, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, मानव सूत्र रूप में सारे हिंदुस्तान के इतिहास को बयान कर देती है। नाटक के जनतांत्रिक माध्यम में जिसे पढ़े लिखे और अपढ़ सम्मान भाव से देख और समझ सकते हैं। सत्ता के अन्याय का ऐसा तीखा पर निर्विकार सलगता प्रदर्शन अन्यत्र कठिनाई से मिलेगा। अंग्रेजी राज के प्रति एकदम सीधा पर कानून की पकड़ में न आने वाला संकेत भारतेंदु ने यो किया है। अंधाधुंध मच्छो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। यहाँ अर्थ की कुंजी छोटे से अव्यय शब्द मानहु में है, जो उत्प्रेक्षा और सामान्य उक्ति दोनों की भंगिमा एक साथ लिए है। सात समुद्र पार स्थित अंग्रेजी शासक के अन्याय का ऐसा सीधा और दो टुक वर्णन करना बड़े लेखकीय जोखिम की बात है। और रोचक बात यह है कि जगह जगह भारतेंदु अंग्रेजी प्रशासन की प्रशंसा भी करते चलते हैं। यहीं भारतेंदु की दृष्टि में फांक वाली बात आती है। अंग्रेजों के प्रति भारतेंदु युग के लेखकों के अविकर्षण भाव की चर्चा कई बार होती है। स्वयं भारतेंदु का इस प्रसंग में दृष्टिकोण इन दो पंक्तियों में आ जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सबै सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति खुआरी। मुसलमान शासकों के टूटते बिखरते राज की अव्यवस्था को देखते अंग्रेजी शासन की नई व्यवस्था निश्चय ही सराहनीय थी, पर इस तरह का कठोर आर्थिक शोषण इसके पहले कभी नहीं हुआ। यह बात भी उस युग के मनुष्यों के सामने बहुत स्पष्ट थी। अंग्रेजों के प्रति अविकर्षण भाव का सूत्र यही मिलता है जो आगे चलकर भी भारतीय मानस को बराबर बांटे रहा। उनके मन में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों अपने स्थान पर खड़ी है। भारतेंदु अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 87 शासन की अंधेर गर्दी का जैसे खुलकर वर्णन करते हैं, वैसे ही आत्मीयता के साथ महारानी विक्टोरिया की कल्याण कामना करते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकृष्ट होते हैं, पर कुछ भयभीत मुद्रा में। कठिन सिपाही द्रोह अनल जाजल बल नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहूं भारतवासी। वास्तविकता यह है कि इन दोनों मनस्थितियों का सामंजस्य भारतेंदु के समय तक संभव हो नहीं पाता, जिन विरोधों का शमन आगे चलकर महात्मा गांधी करते हैं, जहां पहुंच का पुनर्जागरण को अपनी निष्पत्ति प्राप्त होती है। और यह भी ठीक है कि वहां से चक्र फिर उल्टा चलने लगता है। पुनर्जागरण ने अध्यात्म को लोक सेवा से जोड़ा और फिर लोक सेवा को राष्ट्रीयता से। कुछ समय तक तो राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक आधार पुष्ट रहा, पर ज्यों-ज्यों उसके स्वरूप में राजनीति प्रवेश करती गई त्यों-त्यों न्यस्त स्वार्थ प्रबल होते गए। संस्कृति एकीकरण करती है, राजनीति विभाजन। यह प्रक्रिया पुनर्जागरण या भारतीय पुनर्जागरण और उसके बाद के काल में अच्छी तरह देखा जा सकता है। भारतीय प्रक्रिया संस्कृति से राजनीति की ओर उन्मुख हुई, जबकि अमरीकी मनीषी एडम्स की नीति थी कि पहले राजनीति और रणनीति को पढ़ लिया जाए, तब धीरे धीरे संस्कृति की ओर अग्रसर होना उचित है। पुनर्जागरण प्रक्रिया के दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। किसके परिणाम इतिहास में अधिक स्थायी होंगे, इसकी भविष्यवाणी इतनी जल्दी मुनासिब नहीं। भारतेंदु युगीन द्वैत पुनर्जागरण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी, विचार आंदोलन, खड़ी बोली, गद्य, यह एक पक्ष था, जबकि दूसरे पक्ष में थे संस्कार, रचना, ब्रजभाषा, कविता। भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे उतने संस्कारों से नहीं, और यह स्वाभाविक था। पहले विचार बदलते हैं, तब संस्कार उनका अनुसरण करते हैं। इस संदर्भ में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की यह व्यवस्था सजग हो या सहज बुद्धि से बहुत कुशल और उपयुक्त थी। संस्कारों और रचना की आधुनिकता का आरंभ छायावाद युग से देखा जा सकता है, जहां काव्य भाषा भी एक रूप होकर अधिक अर्थक्षम होती है और कविता और गद्य दोनों क्षेत्रों में। भारतेंदु युगीन लेखक संवेदनात्मक स्तर पर परस्पर बहुत निकट रहे हैं। एक कारण तो शायद यह था कि लेखकीय मंडल का यह जीवन, जो साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़ा था, अपने नए नए उत्साह में समान आदर्शों से अभिप्रेरित था। फिर भारतेंदु का संरक्षण और आत्मीय भाव का मिला जुला रूप उन्हें सहज भाव से नेतृत्व के रूप में स्वीकार्य था। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर, बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद, दामोदर शास्त्री सप्रे काशी, काशीनाथ खत्री इलाहाबाद, राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप काशी, लाला श्रीनिवास दास दिल्ली, मोहनलाल विष्णु पंड्या काशी, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी, केशव राम भट्ट पटना, ठाकुर जगमोहन सिंह काशी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, अंबिका दत्त व्यास काशी, रामकृष्ण वर्मा काशी, सुधाकर द्विवेदी काशी, गोस्वामी राधाचरण वृंदावन, लाला सीताराम इलाहाबाद, राधा कृष्णदास काशी। मंडल के केंद्र में भारतेंदु थे और काशी एक प्रकार से उसका केंद्रीय स्थान था। अधिकतर लेखक काशी और आसपास के नगरों के थे, यद्यपि दिल्ली और वृंदावन जैसे तब के सुदूर लेखकों के स्थानों के लेखक भी उनसे वैसी ही घनिष्ठता से जुड़े थे। इन लेखकों की व्यक्तिगत रचनात्मक उपलब्धि समान स्तर की नहीं है, पर एक वृत्त के रूप में उनका योगदान अपने में विशिष्ट है। जिन पत्रिकाओं ने इन्हें जोड़ रखा था उनमें से कुछ के नाम हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद कादम्बिनी प्रेमघन, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, बिहार बंधु केशव राम भट्ट, भारतेंदु, गोस्वामी राधाचरण। साहित्य और पत्रकारिता का यह विलक्षण समागम पुनर्जागरण युग की संश्लिष्ट चेतना के अनुरूप था। भारतेंदु युग के लेखकों ने सभी माध्यमों में लिखा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध और आलोचना। उपन्यास, निबंध, आलोचना और पुस्तक समीक्षा की तो शुरुआत ही इस काल में हुई। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु 1882, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के ललित निबंध, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लंबा आलोचनात्मक निबंध नाटक 1883 अपने अपने माध्यमों की पहली रचनाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी का पुनरारंभ होने के कारण इस युग के लेखकों ने लोक साहित्य से भी काफी प्रेरणा ली। कजली, मुकरी, चूरन के लटके, लावनी जैसी लोक प्रचलित माध्यमों को इन लेखकों ने श्रेष्ठ साहित्य में संक्रमित किया। इस दृष्टि से इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थकता रखता है। इस रचना प्रक्रिया का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की तरह आधुनिक काल का यह प्रथम चरण है, जहां लोक साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य तथा आधुनिक संदर्भ में पत्रकारिता और साहित्य के बीच संक्रमण अभी चल रहा है। एक और उपन्यास, ललित निबंध तथा पुस्तक समीक्षा जैसे नए माध्यम अंग्रेजी के प्रभाव से ग्रहण किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कजली, लावनी और मुकरी जैसे लोक माध्यमों का अकुंठ भाव से प्रयोग हो रहा है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है, और यह संयोग से कुछ अधिक है कि पश्चिम से लिए गए इस नए काव्य रूप की मुख्य रचना समस्या है भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रामक प्रभाव की। एक ओर पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर साथ ही साथ उस प्रक्रिया के परिणामों का परीक्षण भी चल रहा है। परीक्षा गुरु का स्वर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का पूरा प्रयास लेखक ने किया है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में संसार के प्रसिद्ध पुस्तकों के आप्तवचन तथा उक्तियों को शीर्ष बंध के तौर पर रखा गया है। अंग्रेजी उपन्यास जब 17वीं सदी में गति पकड़ता है तो कई बार नैतिकता विरोधी कहकर आलोचकों ने उस पर आक्रमण किया था। रिचर्डसन और फील्डिंग के लोकप्रिय उपन्यासों की निंदा करते हुए उस समय कुछ परिपत्र भी प्रसारित हुए थे। इस सामाजिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ही शायद परीक्षा गुरु का लेखक अतिरिक्त सतर्कता बरतता है और इस बात की चिंता करता है कि उसकी कथाकृति में शिथिल रूप से यथार्थवादी चित्रण न हो। परीक्षा गुरु इस व्यग्रता में लगभग उपदेशात्मक हो जाता है। उपन्यास में नए उभरते मध्य वर्ग के प्रवणता की ओर अग्रसर युवकों का चित्रण है, जिनकी ओर से समाज को सबसे अधिक आशाएं हो सकती हैं। केंद्रीय चरित्र लाला मदन मोहन है, जो रईस परिवारों और संस्कारों के हैं। उनकी मित्र मंडली उन्हें बातों में चढ़ाकर नए फैशन की ओर ले जाना चाहती है, नए तरह के फर्नीचर, पहनावे और आभूषण, पर उन्हें फिजूल खर्ची के लिए प्रेरित किया जाता है, यह बताकर कि शहर के अन्य रईस इन्हीं आधुनिक उपकरणों को खरीद रहे हैं। इस प्रतिद्वंदिता के भाव को उपजाकर नई सभ्यता की दौड़ आरंभ होती है। मदन मोहन की मित्र मंडली में केवल एक ब्रज किशोर है, जो उसका शुभ चिंतक है और फैशन के इस नए प्रवाह में बह नहीं जाना चाहता। शेष सब चाटुकार और समाज सेवी हैं। ब्रज किशोर और अपनी पत्नी की सहायता से ही मदन मोहन विपत्तियों के उस गर्त से निकल पाता है, जिसमें फैशन की अंधी दौड़ ने उसे धकेल दिया था। पुराने रूपकों की व्याख्या के सादृश्य पर देखें तो यह विवेक और परंपरा का सहारा है, जो विदेशी आक्रामक संस्कृति से रक्षा करता है। आधुनिक काल में उपन्यास के जन्म के आरंभ से ही हर देश में उसके दो विरोधी उपयोग चल रहे हैं। एक ओर नग्न यथार्थ का शिथिल और आकर्षक चित्रण है, तो दूसरी ओर उसमें लिप्त न हो जाने के लिए पूरी तौर पर सावधान किया जा रहा है। एक पक्ष का उदाहरण किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरे पक्ष की कथा कृतियां हैं परीक्षा गुरु और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। उपन्यास के काव्य रूप में सामाजिक यथार्थ के अंकन का संतुलन आगे चलकर प्रेमचंद में बनता है, जहां से उपन्यास का वास्तविक कला रूप आरंभ होता है। श्रीनिवास दास ने भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक में भी कई रचनाएं लिखी, पर उन्हें विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हुई। संयोगिता स्वयंवर की तो कई जगह तीखी आलोचना ही हुई, जहां से हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात होता है। सदादर्श नामक साप्ताहिक पत्र इन्होंने कुछ समय तक चलाया, जिसे बाद में कवि वचन सुधा के साथ मिला दिया। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य इलाहाबाद के बालकृष्ण भट्ट थे। भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी क्रमशः दोनों के समकालीन और दोनों युगों को जोड़ने वाले। इनके कृतित्व में भी विधाओं का प्रतीकर वैविध्य देखने को मिलता है। नाटक, उपन्यास, ललित निबंध, पुस्तक समीक्षा, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों में पंडित भट्ट का योगदान है। यद्यपि आगे चलकर निबंधों के शैलीकार के रूप में उन्हें विशेष ख्याति मिली। नूतन ब्रह्मचारी शीर्षक लघु उपन्यास में इन्होंने दो विरोधी प्रकार के चित्रों का आमना सामना किया है। विनायक उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार अभी अभी हुआ है और जिसके माता पिता आयोजन के अंतिम कार्यक्रम भोज की व्यवस्था के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के एक मित्र के घर गए हुए हैं। अकेले विनायक का सामना डाकुओं के सरदार से होता है, जो घर को सुनसान समझकर लूटने आया है। विनायक इस सरदार का स्वागत करता है, क्योंकि उसके पिता समझा गए हैं कि उनकी अनुपस्थिति में घर पर कोई आमंत्रित बंधुजन आए तो वह उनका सत्कार करे। विनायक डाकुओं के सरदार को न्योतों में आया मानता है। विनायक के सरल स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार के चरित्र में परिवर्तन आता है, जो उसकी मृत्यु के समय तक और गहरा होता जाता है। सात्विकता की विजय ही यह उपन्यास का मूल संदेश है, जो परंपरागत भारतीय संस्कृति में निष्ठा के साथ उपस्थित दिखाई गई है। नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप के अंकों में क्रमशः हुआ था। निबंधों में बालकृष्ण भट्ट के पांडित्य और मोहल्ले टोले में प्रचलित भाषा की भंगिमा का एक दूसरे से मिलाप होता है। ललित निबंध की यह खास प्रतीक और बनावट हजारे प्रसाद द्विवेदी से होती हुई विद्यानिवास मिश्र तक आती है। वैचारिक क्षेत्र में लेखक की तेजस्विता उसके पत्रकार रूप में दिखाई देती है। हिंदी प्रदीप के लेखों और टिप्पणियों की निर्भीकता हिंदी पत्रकारिता के उस श्रृंखला का अंग है, जो भारतेंदु की कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन चंद्रिका से आरंभ होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती तक चलती है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के लेखकों का प्रशिक्षण पत्रकारिता की पाठशाला में हुआ है। कॉलेज और विश्वविद्यालय की उपलब्धियां वहां बहुत कम है। पृष्ठ संख्या 90। हिंदी प्रदीप के पृष्ठों में ही हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म होता है। 1886 के प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना प्रकाशित की। यदि भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 से हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात होता है, तो सच्ची समालोचना 1886 से व्यवहारिक आलोचना का। यह आलोचनात्मक लेखन अपने युग की केंद्रीय विधा नाटक से जुड़ा है, तो यह हिंदी आलोचना की सावधानी का ही प्रमाण कहा जाएगा। भारतेंदु आधुनिक काल में गद्य का आरंभ पुनर्जागरण चेतना के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नाटक से करते हैं, जो आलोचना भी इस चुनाव के महत्व को समझने में चूक नहीं करती। बालकृष्ण भट्ट के सहयोगी और प्राय समानांतर लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है, पर यह भारतेंदु की तरह पांडित्य के बजाय लोक जीवन की ओर अधिक झुके थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक के रूप में इन्होंने अनेक विषयों पर निबंध तथा टिप्पणियां लिखी। कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं: ओ हो ओ ली है, बेगार, रिश्वत, कचहरी में शालिग्राम जी, काने कुब्जों की ही सबसे हीन दशा क्यों है, वर्षारंभ, घूरे के लता बिने कनातन का डोल बांध है, कानपुर और नाटक, कन्नौज में 3 दिन, पंच परमेश्वर। जिंदा दिली के कारण इनके निबंधों में सामाजिक विवेचन और विनोद प्रियता पर्याप्त मात्रा में है। कविताओं में लोक शैली का आश्रय जगह जगह लिया गया है। कानपुर लावनी गायन का केंद्र होने से इन्होंने इस रूप में भी रचना की है और आल्हा शैली में भी लिखा है। हिंदी पुनर्जागरण के नेता भारतेंदु की नीति के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र ने भी नाटक के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। उन्होंने स्वयं कई नाटकों और प्रहसनों की रचना की तथा उनके अभिनय में बराबर रुचि लेते रहे। प्रसिद्ध है कि किसी स्त्री पात्र की भूमिका में उतरने की जब जरूरत हुई तो उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनके जीवित रहने पर ही अपनी मूछें मुड़ाने की अनुमति मांगी थी। कानपुर और नाटक शीर्षक से टिप्पणी लिखते हुए अपने नगर में हुए नाटकों के अभिनय का परिचय उन्होंने दिया है। टिप्पणी से स्पष्ट है कि भारतेंदु के कई नाटकों सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी और अंधेर नगरी का मंचन यहाँ हुआ। स्वयं अपने योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है, केवल 82 के सन में प्रताप मिश्र की दौड़ धूप से नील देवी और अंधेर नगरी खेली गई थी। टिप्पणी के अंत में नगर के रंग कर्मियों को और अधिक प्रस्तुतियों के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारतेंदु और लाला श्रीनिवास दास की भांति प्रताप नारायण मिश्र को भी कम आयु मिली। क्रमशः 35, 36 और 38 वर्षों की अल्पावधि में ही इन लेखकों ने युगांतर उपस्थित कर दिया। इससे इन रचनाकारों की साहसिकता और निष्ठा का पता चलता है। नाटक के अतिरिक्त भारतेंदु युग में अनुवाद कार्य को भी लेखकीय कार्यक्रम में महत्ता दी जा रही थी। प्रताप नारायण मिश्र ने बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चटर्जी की कई कथाकृतियों का अनुवाद किया। भारतेंदु मंडल का संस्कार 20वीं शताब्दी में अपेक्षाकृत दूर तक लाने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। लोक जीवन से जुड़ी रईसी और उसकी पृष्ठभूमि पर विकसित राष्ट्रीय भावना भारतेंदु और प्रेमघन दोनों मित्रों के निजी चरित्र का अंग है, जिसे उनकी पत्रकारिता ने खूब खिलाया। प्रेमघन ने 2 पत्र निकाले थे, आनंद कादम्बरी और नागरी नीरद। प्रेमघन की प्रायः सभी रचनाएं पहले इन पत्रों में प्रकाशित हुई। हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन की पत्रिकाओं में हुआ। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी पृष्ठ संख्या 91 और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। प्रेमघन का नगर मिर्जापुर वर्षा संबंधी लोकगीत कजली गायन के लिए विख्यात रहा है। उन्होंने स्वयं अनेक विषयों पर कजली की रचना की और अन्य कवि गायकों की रचनाओं का संकलन भी किया। कजली गायकी के उत्सवों में वे प्रायः शामिल होते। एक बार भारतेंदु के साथ भी ऐसे आयोजन में सम्मिलित हुए थे। प्रेमघन उपनाम तथा उनके दोनों पत्रों के नामकरण में कादम्बिनी और नीरद की उपस्थिति अज्ञात रूप से इस वर्षा मंगल काव्य से जुड़ी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित आधुनिक काल में एक ओर पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न है तो दूसरी ओर अपने लोक जीवन से जुड़े रहने की उतनी ही उत्कट लालसा है। पत्र पत्रिकाओं के आयोजन से यदि एक उद्देश्य की पूर्ति होती है तो नाटक और लोक काव्यों के प्रचार प्रसार से दूसरे उद्देश्य की। यही कारण है कि इस युग के लेखकीय कार्यक्रम में तीन अंग बराबर मिलेंगे, पत्रकारिता का निरंतर आयोजन, नाट्य लेखन और अभिनय तथा कजली लावनी जैसे स्थानीय लोक माध्यमों का संवर्धन या लोक जीवन से जुड़े रहने की चिंता भारतेंदु युगीन लेखक को पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में बहने नहीं देती। विचारों और संस्कारों दोनों के यथावश्यक पोषण तथा परिमार्जन का निश्चय ही एक कुशल ढंग कहा जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि हिंदी क्षेत्र में पारसी मंडलियों की स्थिति से ये लेखक परेशान थे। उनकी लोकप्रिय रचना से उन्हें स्पर्धा थी, पर उसके फूहड़पन से वे उतने ही क्षुब्ध थे। 1871 के आसपास बंबई से आरंभ इस व्यावसायिक रंगमंच प्रणाली ने अधिकतर दो प्रकार के नाटक अपनाए, धार्मिक और इश्क संबंधी। सामान्य जनता के इन दो मूल वृत्तियों को संतुष्ट करके ही अपना व्यवसाय चलाते थे। इन पारसी कंपनियों का दौर प्रायः 1930 तक बना रहा, जब सिनेमा के बढ़ते प्रभाव में समाप्त हो गई। पारसी नाटकों के विरोध में स्वयं भारतेंदु नाटक शीर्षक निबंध और उनके सहकर्मियों ने बहुत कुछ लिखा, पर उनके किन्हीं लटकों को उन्होंने स्वीकार भी किया। यह उनके मन में स्पष्ट हो गया था कि अधिकांश में निरक्षर जनता के बीच बैठने के लिए रंगमंच तथा लोक माध्यमों से उपयुक्त कोई और प्रणाली नहीं है। भारतेंदु युग के लेखकों ने इन दोनों माध्यमों का भरपूर उपयोग किया है।